जरा तुम सोचो कि मीरा ना हो, कबीर ना हो। कबीर की जगह एक और कुबेर हो जाए तो जिंदगी में जो थोड़ा बहुत अर्थ है, कहीं कहीं किरण फूटती मालूम पड़ती है, वो भी ना फूटे। इस अंधेरी रात में जो कोई तारा जगमगाता है, वो भी ना जगमगाए। इन कांटों में जो कभी कभी एक फूल खिल जाता है, वो भी ना खिले। ये थोड़े से जो पागल हैं, जीसस ने कहा है इन्हीं के कारण जीवन में नमक स्वाद है। दीस आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। ये वचन प्यारा है, ये पृथ्वी के नमक है। इन्हीं के कारण जिंदगी बेरोनक नहीं हो पाती, बेस्वाद नहीं हो पाती। ये थोड़े से लोगों पर ही आशा है, मगर इन थोड़े से लोगों का सूत्र बड़ा सरल है। काश तुम बुद्धिमानी को जरा एक किनारे रख के समझो तो सूत्र बड़ा सरल है। इनका सूत्र इतना ही है कि हम बहुत छोटे हैं, अस्तित्व विराट है, हम विराट के खिलाफ लड़के कैसे जीत सकेंगे। ये तो ऐसे ही जैसे एक बूंद सागर से लड़ने लगे, कि एक किरण सूरज से लड़ने लगे, कि एक पत्ता वृक्ष से लड़ने लगे।
नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड समर्पित है मीरा की भक्ति को। रिसेंटली आई वॉज ब्लेस्ड टू अटेंड अ मेडिटेशन रिट्रीट विथ माँ धर्म ज्योति, और यही इंस्पिरेशन है इस एपिसोड के लिए। आज के एपिसोड में डिस्कोर्स, पद घुंघरू बांध वॉल्यूम नंबर 9 से लिया गया है, जिसमें हम ओशो से सुनेंगे मीरा के प्रेम मार्ग समर्पण को।
Thank you. संतों के संग
रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी सागर में सरिता समाने दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल
कहां करूं कछु बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की मीरा कहती पंख होते तो मैं उड़ाती तुमने पंख भी नहीं दिए आकाश में थे तो मुझे पंख देते दूर थे तो मुझे शक्ति देते मुझे पंख नहीं दिए फिर ये आकांक्षा क्यों दी आकाश को छूने की चांतारों को हाथ में लेने की यह अभिप्सा क्यों थी ये भक्त का परमात्मा से विवाद है बहुत विवाद है भक्त के भक्त ही हकदार है विवाद करने का दूसरे को तो कोई हक भी नहीं कहां करूं कछु बस नहीं मेरो मैं गई मेरा बस गया पंख नहीं उड़ जावन की और पंख मेरे पास नहीं कि उड़ाऊं तुम क्यों वहां खड़े हो तुम्हारे पास तो पंख है तुम तो आ सकते हो मैं असहाय तुम तो असहाय नहीं मैं निर्बल तुम तो निर्बल नहीं मैं पापी तुम तो महाकरुणावान हो मेरी हजार भूल चूके मगर तुम क्षमा तो कर सकते हो तुम तो आ सकते हो मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे चेरी भयो हूं तेरे दामन की तेरे पल्ले को पकड़ा है तू तो अभी पकड़ में नहीं आया लेकिन तेरा पल्ला पकड़ में आ गया ये बात बड़ी प्यारी है तेरी तो दास हूं ही उसकी तो बात छोड़ तेरे दामन की भी दासी हूं चेरी भई हूं तेरे दामन की ये तेरा जो छोटा सा पल्ला मेरे हाथ में मेरी मुट्ठी में आ गया इसकी भी गुलाम हो गई ऐसे यह भी सौभाग्य है कि तेरा पल्ला मेरे हाथ पड़ गया है पल्ला निश्चित हाथ पड़ जाता भक्त के परमात्मा के मिलने में समय लगता है लेकिन पल्ला मिल गया तो परमात्मा भी मिलता है पल्ला ही मिल गया तो अब देर अबेर हो सकती लेकिन अब असंभावना नहीं क्या अर्थ होता है परमात्मा के पल्ले के मिलने का वो जो कभी कभी झलक मिल जाती कभी कभी इसी शांत क्षण में एकदम सारा जगत रूपांतरित हो जाता है अभिभूत हो जाता है प्रभु से वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते वही दिखाई पड़ता तारे नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है। लोग नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है। ऐसे चमत्कारिक क्षण भक्त के जीवन में आने लगते जब वो अपनी आंखें मल कर देखता है कि क्या हो रहा है। लोग खो गए, ईश्वर है। वृक्ष खो गए, ईश्वर है। वही हरा है वृक्षों में, वही जलधार में बह रहा है, वही आकाश में बादल बन के उड़ रहा है। ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां खुलती और एक क्षण में सब रूपांतरित हो जाता। हम दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते, हम एक दूसरे यथार्थ में प्रवेश कर जाते। ऐसा होता है, यही पल्ला है, लेकिन फिर गिर जाते हैं वापस अपनी दुनिया में। ऐसे ही जैसे कोई छलांग लगाए और एक क्षण को आकाश में उड़ जाए, फिर जमीन पर गिर पड़े। इस जमीन में हमारे पैर जमानों से गड़े, इस पृथ्वी से हमारा नाता बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का है। परमात्मा से नाता हमारा बहुत नया है, वो संबंध नया है। ये पृथ्वी की कशिश पुरानी, ये हमें खींच खींच लेती वापस। अक्सर तुमने देखा होगा तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं, चाहे इतने स्पष्ट ना आते हों जैसे मीरा के जीवन में आए, इतने स्पष्ट नहीं आएंगे क्योंकि तुम इतने मस्त नहीं हो, लेकिन कभी ऐसे मौके जरूर आते। इतना अभागा कोई भी नहीं है पृथ्वी पर जिसके जीवन में कभी कभी क्षण भर को किरण नहीं कौंध जाती। किस स्थिति में कौंधेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसके जीवन में कभी कोई किरण न कौंधती हो। भला स्वयं वो भरोसा ना करे, क्योंकि उस किरण की कोई संगति नहीं होती उसके भीतर। उसे खुद ही शक होता है कि मैंने कोई कल्पना कर ली होगी, कि मैंने कोई सपना देखा होगा। कि ये हो कैसे सकता है, या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके ये प्रतिकूल पड़ता हो। उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें परमात्मा की कोई जगह ना हो, तो परमात्मा शब्द नहीं आएगा। या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं कि इस तरह की बातें तो केवल कल्पना जाल है, तो घटना घटेगी वो समझा लेगा अपने को कि कल्पना का जाल है। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में उन्होंने बड़ी शोधबीन की है इस बात पर कि कितने लोगों को कभी कभी धार्मिक अनुभव होता है, तो बड़ी हैरानी की बात है, हर 5 आदमी में एक आदमी को कम से कम। बड़ी संख्या है 5 आदमी में एक आदमी, 20% आदमियों को कभी कभी झलक मिलती। जब मैं उनका सर्वे पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें ख्याल में थी। ये जिन लोगों ने कहा कि हाँ हमें कुछ अनुभव होता है, इनमें वही लोग हैं जिन्हें ईश्वर पर आस्था है। वे बहुत से लोग जिन्होंने कहा हमें अनुभव नहीं होता, बहुत संभव उन्हें भी अनुभव हुआ हो, लेकिन उनकी ईश्वर पर आस्था नहीं, वो ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें वे भी लोग सम्मिलित हैं। और अमेरिका जैसे मुल्क में जहां चीजें बिल्कुल ही तकनीकी और वैज्ञानिक और तर्क से भर गई, जहां लोगों ने अपने हृदय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, जहां हृदय धड़कते ही नहीं, जहां लोग हृदय से बच के निकल गए, सिर्फ खोपड़ी में जी रहे हैं, अगर वहां 20% लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की कभी कभी झलक मिली, तो आदिवासियों में कितनों को मिलती होगी, दूर जंगल में बसे लोगों को कितनों को मिलती होगी, बड़ी संख्या होगी। मेरे हिसाब से 50% लोगों को सहज ही मिलती, यही अनुपात है हर चीज में। जैसे आधे स्त्री होते दुनिया में, आधे पुरुष होते, ऐसे 50 लोग झलक वाले हो, 50 लोग गैर झलक वाले होते, ये अनुपात है। ये दोनों एक दूसरे को संभाले रहते। जिसको परमात्मा की झलक मिलती है वो दुनिया को एकदम उजाड़ नहीं देता, क्योंकि वो जो 50% लोग हैं वो दुनिया को बसाए रखते हैं, नहीं तो बाजार कैसे चले, दुकान कैसे चले। मैंने सुना है एक कोयले का दुकानदार था, 2 पार्टनर थे, एक गया एक दिन साधु संग में और बड़ा प्रभावित हो गया और उसने दीक्षा ले ली। वो वापस आया तो उसने अपने साझीदार को कहा कि अद्भुत आनंद आ रहा है, अब तू भी दीक्षा ले ले। मगर वो साझीदार सुने कुछ बोले ना। दिन बीते, 2 दिन बीते, निश्चित ही जब किसी को आनंद अनुभव होता है तो अपने निकट को बांटना चाहता है। तुम भी मेरे पास आते तो कभी चाहते तुम्हारी पत्नी आ जाए, पति आ जाए, बेटा आ जाए। वो बड़ी कोशिश करता था कि चल तू भाई एक दफे सुन भी तो, कुछ अद्भुत होता है। मगर उसने कहा कि देख अब ज्यादा मेरे पीछे मत पड़, अगर मैं भी धार्मिक हो गया तो कोयला कौन तौलेगा कौन कोयला और डांडी कौन मारेगा, ये भी तो सोच। देख रहा हूं जब से तू ये साधु सत्संग में पड़ा है डांडी नहीं मार रहा है, ये दुकान चलानी कि नहीं। तो ये दुनिया है, यहां दुकान है, यहां आधा आधा है हर चीज में। यहां अगर आधे लोग हृदय पूर्ण जीते हैं तो आधे लोग मस्तिष्क से पूर्ण जीते हैं। ये संतुलन बनाए रखते हैं, नहीं तो संतुलन उखड़ जाए। मेरे देखे 50% लोगों को सहज ही अनुभव होते, हालांकि वो अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करते और भय के कारण किसी को कहते भी नहीं कि लोग कहेंगे पागल हो गए। कल सुमित्रा का प्रश्न था, सुमित्रा काठमांडू से आई, उसने पूछा कि मैं इतने प्रसन्न कभी भी नहीं थी अपने जीवन में, ये 7 दिन मेरे जीवन में अपार आनंद के दिन थे, मैं कभी हंसी नहीं जीवन में, ये 7 दिन मैं हंसती रही हूं, प्रसन्न रही हूं, गदगद रही हूं, अब मैं डरती हूं कि लौट के जाऊंगी तो कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। ये खोने का डर क्यों पैदा होता है? ये डर इसलिए पैदा होता है कि वो लोग जो सुमित्रा को एक ढंग से जानते रहे, यहां तो ठीक है, यहां तो मस्तों की एक जमात है, यहां तुम ना हंसो ना रो तो लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़ बात क्या है। लेकिन वहां काठमांडू वापस जाएगी तो वहां दूसरे तरह के लोग हैं, उनसे तो ये भी नहीं कह सकेगी कि 7 दिन में आनंद इतना ही, वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक है, आनंद होता रहा होगा पहले कभी सतयुग में, अब नहीं होता। इस कलयुग में कहां आनंद, किसी जैन से कहेगी कि आनंद, वो कहेगा पागल हो गई हो, पहले होता था, अब पंचम काल चल रहा है, अब कहां आनंद, अंधेरी रात चल रही है, अब कहां आनंद। कहेगी कि कुछ झलके मिली, कोई मानेगा नहीं, जब कोई नहीं मानेगा तो कह भी ना सकेगी, कह भी ना सकेगी और प्रकट भी ना कर सकेगी, दबा लेगी। थोड़े दिन में बात जो घटी थी वो स्मृति रह जाएगी, फिर थोड़े दिन में स्मृति धूमिल हो जाएगी, 1-2 साल के बाद सोचने लगी कि ऐसा हुआ था, सच हुआ था या मैंने कल्पना कर ली थी, क्योंकि अगर सच था तो टिकता, टिका क्यों नहीं, मन का ही भाव रहा होगा, शायद सम्मोहित हो गई थी वहां, इतने लोग प्रसन्न थे, आनंदित थे, नाच रहे थे, उसी रौ में मैं भी बह गई थी। नहीं तो जो तुम्हारे भीतर यहां हो रहा है वो कहीं भी होगा, काठमांडू में कोई अड़चन नहीं, कहीं कोई अड़चन नहीं। पर अड़चन इस बात से आती है कि हम अपनी बात को प्रकट तक नहीं कर पाते। तुमने कभी सोचा कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो जाए, तुम अपनी पत्नी से जाकर कह सकोगे कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ, वो फौरन फोन करेगी पुलिस में कि मेरे पति को कुछ गड़बड़ हो गई, पुलिस भेजो, या खबर करेगी डॉक्टर को कि जल्दी आओ, या अपने रिश्तेदारों को बुलाएगी कि इनको बांधो, इनको कुछ हो गया, इनको ट्रैंकुलाइजर वगैरह दिलवाओ या इलेक्ट्रिक शॉक, इनको कुछ हो गया। ऐसा हुआ, मेरे एक मित्र यहां से संन्यास लेके काशी गए, कुछ दिन बाद उनकी खबर आई कि मैं अस्पताल में पड़ा हूं, रही खूब मजा, मैं आनंदित हूं इसलिए अस्पताल में पड़ा हूं, घर के लोगों ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। मैं उनसे कहता हूं मुझे अनुभव हो रहा, वो कहते हैं तुम चुप रहो, तुम बोलो ही मत, तुम शांति रखो। मैं उनसे कहता हूं मैं शांति के ही कारण तो आनंदित हो रहा हूं, वो मुझे नाचने भी नहीं देते, गाने भी नहीं देते। डॉक्टर है, वो कहता है कि तुम ये गैरिक वस्त्र छोड़ो, इसी से झंझट में पड़े। उन मित्र ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये सब पागल हैं, मगर इन सबको लगता है कि मैं पागल हूं, मैं जिंदगी में कभी इतना आनंदित नहीं था, तब मुझे किसी ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। मेरे बच्चे रोते, वो मुझसे कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, और मुझे हंसी आती कि मैं इतना ठीक कभी था ही नहीं जितना ठीक अब हूं। दफ्तर के लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी, वो कहते तुम 2-3 महीने आराम ही कर लो, क्योंकि जाके बैठता हूं टेबल पे प्रसन्न तो उनको जस्ता नहीं, वही पुराना आदमी वो चाहते हैं कि चला आ रहा है घसीटता हुआ अपने को, सिर पे बोझ लिए हुए मरा मराया, किसी तरह वो वही आदमी देखना चाहते, अब मैं क्या करूं। मैंने उनको कहा कि तुम यहां आ जाओ, वो आके गए। मैंने उनको समझाया कि तुम्हें जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, मगर काशी जैसी खतरनाक जगह, ये काठमांडू से काशी ज्यादा खतरनाक है, यहां काठ के उल्लू ज्यादा है, काशी नहीं, तुम काशी में हो सोच समझ के चलो। जब एकांत में निकल गए, कहीं हंस लिए, नाच लिए, कहीं एकांत में मंदिर में जाके, या गंगा में चले गए, वहां अपना उछल कूद कर लिए रेत में जाके, मगर दफ्तर इत्यादि में अगर तुम नाचते प्रसन्न जाओगे, इतने उदास लोग ये बर्दाश्त न कर सकेंगे। और उनकी भी अपनी व्यवस्था है, वो सोचते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक दुख है, ये अस्वाभाविक, कुछ गड़बड़ हो रही। फिर उनकी भीड़ है, अस्पताल भी उनके, डॉक्टर भी उनके, सब उनका जाल है। तुम वहां बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें थोड़ा सोच से चलना पड़े। वही मैं सुमित्रा से कहता हूं, यह आनंद तो रह सकेगा, इसमें कोई अड़चन नहीं, द्वार दरवाजे बंद करके आनंदित हो लेना। मैं काठमांडू में उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना यहां हूं, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको भी एकदम से प्रकट मत करने लगना, जब देख लो आदमी को, पहचान लो कि हां अपने ही जैसा है, तब प्रकट करना, नहीं तो मत प्रकट करना। पहले जरा जांच परख कर लेना कि है पियक्कड़ है तो ठीक है, तो इससे पीने की बातें करना, निकाल लाना अपनी सब शराब इत्यादि और प्याले फैला देना और दस्तरखान बिछा देना और होने देना आनंद। मगर पहले गौर से देख लेना ये आदमी किस तरह का है। ये उन लोगों में से नहीं है जिनको भगवान बनाता होशियार, अगर उनमें से है इससे बात ही मत करना, नहीं तो ये तुम्हें झंझट में डालेगा, क्योंकि ये लाख है और तुम एक हो। अपनी मस्ती को अपने भीतर रखना, एकांत में प्रकट हो जाने देना, वृक्षों से बात कर लेना, चांतारों से बोल लेना, पहाड़ पत्थरों से कह देना, उनके पास भी हृदय और आदमियों से ज्यादा बेहतर, अब भी धड़कता है। चश्मे साकी की तरजमानी से जिंदगी भर गई मयानी से, एक बार झलक मिल जाए तो जिंदगी में बड़ा आनंद भर जाता है। चश्मे साकी की तरजमानी से उस प्यारे की जरा सी झलक मिल जाए, जिंदगी भर गई मयानी से, जहल में बस रहा है जो में सऊर, अल अमा ऐसी नुक्तादानी से। जब भक्त को पता चलता है कि मेरे बिना किसी ज्ञान के और परमात्मा मुझ में झलक दे दिया है, तब वो हैरान होता है कि लोग फिर क्यों ज्ञान में उलझे, क्यों शास्त्रों से सिर फोड़ रहे हैं। जहल में बस रहा है जो मैं जरूर सऊर, और जिन लोगों को भी ज्ञान का घमंड है उन्हें पता नहीं कि अज्ञानी को मिलता परमात्मा, सरल को मिलता, सीधे साधे को मिलता, ज्ञान शून्य को मिलता, क्योंकि ज्ञान भी अहंकार का आभूषण है। अलमा ऐसी नुक्तादानी से, हे प्रभु ऐसे ज्ञान से मुझे बचाना जिसके कारण अटकाव पड़ जाती। मस्तों को मिलता परमात्मा, सब फसूने जमाल कायम है इसकी अपनी पासबानी से, ये सारा जगत एक ही धुरी पर घूम रहा है, वो धुरी है इसकी, प्रेम की, ज्ञान की नहीं। चांद तारों ने नूर पाया है एक तबस्सम की जोफसानी से, एक ही चमक है प्रेम की चमक, जिससे चांद तारों में नूर है, वृक्षों में फूल है, आदमियों की आंखों में अर्थ है, पैरों में नृत्य है, कंठों में गीत है। जलवाए दोस्त रंगे हुस्ने यकीन, हिज्र पैदा है बदगुमानी से, सिर्फ अहंकार के अतिरिक्त और कहीं नरक नहीं। और जहां अहंकार गया वहां परम सौंदर्य की वर्षा हो जाती, स्वर्ग की वर्षा हो जाती। हमने पाई मुसर्रते अब्दि अपने ही सोजे जावदानी से, और अनंत आनंद तुम्हारे भीतर पड़ा है, और तुम उसे कहां खोज रहे हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी और परमात्मा की दूरी ऐसी नहीं कि तुम भीतर हो और परमात्मा वहां दूर खड़ा है। दूरी ऐसी कि तुम वहां दूर खड़े हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम परमात्मा के पास आओगे उसी दिन तुम पाओगे कि तुम अपने पास आ गए। जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन पाओगे तुमने अपने को पहली दफे पाया है। हंसले जिंदगी है वो आंसू जो गिरे फरते सादमानी से, और जिंदगी का सारा अर्थ उन आंसुओं में है जो आनंद से टपकते हैं। वही काव्य है जीवन का। हासिले जिंदगी हैं वो आंसू जो गिरे फरते सादमानी से, पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, नगमे उठे हैं नोहा खानी से। सच्ची खुशी मिली एक चीज से, पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, जब खुदी मर गई, जब अहंकार का नाश हुआ, जब मैं ना रहा। पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, नगमे उठे हैं नोहा खानी से। और वो जो अहंकार का विसर्जन हो गया, आंसू बहे, रोना उठा, वही एक दिन गीतों में ढल जाता है। ये आंसू ही हैं भजन बन गए जो मीरा के, ये उसके आंसुओं से बहता हुआ आनंद ही है जो भजनों में ढल गया। मुझको कहना हो राज की गर्बात, काम लेता हूं बेजबानी से। राज की जो बात है वो तो चुप चुप कही जाती, और उस चुप चुप बात को शब्दों में कहने का जो करीब से करीब उपाय हो सकता है वो काव्य है। काव्य कम से कम बोलता है और ज्यादा से ज्यादा कहता है। गद्य और पद्य का वही भेद है। पद्य बहुत संक्षिप्त में बोलता है सार, और पद्य में मौन बहुत ही करीब है, पीछे ही खड़ा है, छाया की तरह खड़ा है। इन भजनों को तो पढ़ना ही, इन भजनों के पंक्तियों के बीच बीच में जो खाली जगह उसको मत छोड़ जाना। शब्दों को तो समझना, दो शब्दों के बीच में जो खाली अंतराल है वही मंदिर का द्वार है। नदिया बहे जैसे सावन की, कह करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दामन की। तेरा पल्ला तो हाथ में आ गया, अब तुम मुझे कब मिलोगे। झलक तो मिलने लगी, आलिंगन कब होगा। झलक तो मिलने लगी, हम एक दूसरे में लीन कब हो जाएंगे। ये फासला भी अब नहीं सहा जाता। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। रस तो एक ही है, अमृत तो एक ही है, पीने योग्य शराब तो एक ही है, और वो राम है। कल किसी ने पूछा था कि मीरा कृष्ण में रमी, राम का इतना स्मरण नहीं करती। जिसमें रम जाओ वही राम, राम का और क्या अर्थ होता है। जिसमें रम गए वही राम, कृष्ण मीरा के राम है। हर एक को अपना अपना राम खोजना पड़ता है। उधार राम मत लेना, उधार राम काम नहीं पड़ते। अपना राम खोजना पड़ता है, अपना प्यारा खोजना पड़ता है, अपने ढंग से खोजना पड़ता है, अपनी ही आंख से खोजना पड़ता है। निश्चित ही तुम्हारा प्यारा होगा। झेल लेंगे तकलीफ, मगर मोहल्ले वालों को यह ख्याल पैदा नहीं होने देंगे कि कार एयर कंडीशन नहीं, अब कांच कैसे खोलें, हवा आ सकती उसको भी नहीं ला सकते। कुसंग का अर्थ है जहां क्षुद्र की बात चल रही, जहां लोग उतनी ही बात करते हैं जितनी सुबह अखबार में पढ़ लेते, वो कुसंग है। जहां लोग बात करते हैं कौन सी फिल्म चल रही, किस सिनेमा में चल रही, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, वो कुसंग है। सत्संग का क्या अर्थ है, हरी चर्चा सुन लीजिए, जहां परमात्मा की याद होती, जहां लोग बैठ के उसके गुण गाते, जहां उसका गीत सुनते, जहां थोड़ी देर के अपने हृदय को उसके प्रति खोलते हैं। जमा सब हुस्ने कायनात करो, इसके जलवा तलब की बात करो। कुछ उसकी बात हो, कुछ उस प्यारे की बात हो, कुछ उसके जलवे की बात हो, कुछ उसके सौंदर्य की बात हो, जमा सब हुस्ने कायनात करो। और उसका सौंदर्य ऐसा है कि तुम अगर सारे विश्व का सौंदर्य भी इकट्ठा कर लो तो उससे छोटा है। इसके जलवा तलब की बात करो, साहदे नौ से इसके ताजा करो, उस नए प्रीतम की बात करो। इस दुनिया में तुमने बहुत प्यारे जाने, बहुत प्रीतम जाने, सब कचरा साबित हुए। तो कहती ना मीरा कि तेरे देश में साध नहीं, लोग बसे सब कूड़ो, तेरी दुनिया में राणा बस कचरे ही कूड़ा लोग रहते और वहां साधु नहीं, इसलिए मेरा मन वहां नहीं लगता, मेरा मन तेरे देश में नहीं लगता। सुंदर है देश तेरा लेकिन आत्मा नहीं, वहां साधु नहीं। साहदे नौ से इश्क ताजा करो, अज सरे नौ तकुल्फात करो, फिर नए सिरे से परमात्मा से प्रेम जुड़े, जहां नए प्यारे की बात हो, नए प्रेम के अंकुर उगे, नई फसल काटने की तैयारी हो, खेल के अब जहान के गुजरो, आओ कुछ तलख तजुर्बात करो। अब जिंदगी का खेल बहुत देख लिया, अब कुछ और अनुभव में उतरो, कुछ और गहरे अनुभव में। कड़वे भी होंगे वे अनुभव शुरू में, फिर बहुत मीठे हो जाते। संसार और परमात्मा की परिभाषा में यह ख्याल रखना, संसार के अनुभव शुरू में मीठे फिर कड़वे हो जाते, परमात्मा के अनुभव शुरू में कड़वे फिर मीठे हो जाते। यह हकीकत तो रोज मिटती है, इसको नजरे तवाहुमात करो। ये क्या बकवास लगा रखी है अखबारों की, ये क्या बातें कर रखी हैं धन पैसे की, पद प्रतिष्ठा की। यह हकीकत तो रोज मिटती है, इसको नजरे तवाहुमात करो, छोड़ो इसे, इसको आंख से ओझल होने दो। जिंदगी कर रखी है मानी तलब, जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद है हयात करो। और जिंदगी खड़ी पूछ रही है कि तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है, यही कि कितना धन तिजोरी में। जिंदगी कर रही है मानी तलब, परमात्मा पूछेगा तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है, अर्थ कहां है, तुम्हारा गीत कहां जिसे तुम्हें गाने भेजा था, वो गा सके कि नहीं। मगर फुर्सत कहां मिली, तुम कहोगे अखबार पढ़ते रहे। पहले लोग भगवत गीता पढ़ते थे सुबह, अब अखबार पढ़ते। भगवत गीता पढ़ना सुंदर था, शायद कभी किसी क्षण में कोई बात चोट कर जाती। पहले लोग कुरान पढ़ते थे, अब अखबार पढ़ते। कुरान पढ़ना सुंदर था, वो तरन्नम भी सुंदर है, वो छंद भी प्यारा है, वो चोट को जगा सकती है, तुम्हारे सोए वीणा के तार कप सकते हैं। जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद हयात करो। और जिंदगी में एक ही अर्थ हो सकता है, एक ही अर्थ की संभावना है कि तुम्हारा प्रेम जगे। और प्रेम उतना ही होता है जितना बड़ा प्यारा हो। प्यार ही करना हो तो बड़े से करना, विराट से करना। क्षुद्र से प्रेम किया, क्षुद्र हो जाओगे। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी परिभाषा बनता है। तुमने जिससे प्रेम किया अंततः तुम वही हो जाओगे। तुमने देखा मीरा अंततः कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अक्सर लोग रुपए में नोट में समा जाते, खत्म, 100 के नोट में समा गए, समाप्त हो गए। अक्सर लोग वही हो जाते हैं जो खोजते, वही समा जाते। तुम मीरा पर भरोसा नहीं करते, मगर मैं मानता हूं कि ये बात तो सभी के संबंध में सच है। लोग वहीं समा जाते हैं जो उनका प्रेम है। कोई काम वासना में समा जाता है, कोई धन वासना में समा जाता है, कोई अहंकार में समा जाता है, लोग वहीं समा जाते हैं। तुम्हारा प्रेम ही अंततः तुम्हारा घर बन जाता है। जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद हयात करो। देखो तुम खुद को मतलाए अनवार, रोज रोशन अंधेरी रात करो। तुम्हारे भीतर बड़ी रोशनी पड़ी, उसे जगाओ। जहां ये बात होती हो वो सत्संग, जहां ये याद तुम्हें बार बार दिलाई जाती हो कि तुम्हारे भीतर रोशनी पड़ी, इसे जगाओ। तुम दिए हो, क्यों बुझे पड़े हो। तुम्हारी क्षमता है सूरज बनने की, कम से कम दिया तो बनो। तुम्हारे भीतर बड़ी सुगंध पड़ी है, तुम कहां खोज रहे हो, कस्तूरी कुंडल बसे, और तुम कहां कहां भटक रहे हो। और तुम्हारी नाभि में कस्तूरी पड़ी, वहीं से गंध आ रही। जहां ये बात होती हो, जहां ये बात ही ना होती हो, जहां ये घटना धीरे धीरे घटने लगे, वही सत्संग है, वही है हरिचर्चा। काम क्रोध मत लोभ मोह को चित से बहा दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। जहां प्रभु के रंग में रंगे जाते हो वहां सत्संग है, वहां जाओ, उस रस में डूबो। उसी रस में डूबोगे तो उभरोगे, संसार में डूबे तो खो जाओगे। दरस बिन दुखन लागे नैन। और मीरा कहती है तो आंखें भी दुखने लगी, पलक नहीं झपती, देखती ही रहती हूं, टकटकी लगाए द्वार पर कि कब आओ कब आओ कब आओ, पता नहीं कब आ जाओ, दिन की रात सुबह की सांझ। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब के तुम बिछड़े प्रभु मोरे कभू न पायो चैन। वो जो झलके मिल गई हैं बड़ी मुश्किल कर रही है। जबके तुम बिछड़े प्रभु मोरे कभू न पायो चैन। जब से तुम्हें देखा, जब से तुम्हें थोड़ा छुआ, तुम्हारा स्वाद लिया, तुम्हारा अरस परस हुआ, कभू न पायो चैन। फिर चैन नहीं मिला है, फिर रो ही रही हूं, फिर पुकार ही रही हूं। सबस सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे मीठे बैन। वो जो तुम्हारे प्यारे शब्द सुने थे उनकी ध्वनि भी मुझे कपा जाती, मेरी छाती कपती। विरह कथा कासे कहूं सजनी। और मीरा कहती किससे कहूं ये अपनी प्राणों की पीड़ा, कोई समझेगा नहीं। इसको समझने वाला वही हो सकता है जो इसमें जल रहा हो। विरह कथा कासे कहूं सजनी, हे मेरी सखी मैं किससे कहूं जाके ये अपने प्राणों की तकलीफ, ये पीड़ा, ये जलती आग, ये प्यास, कोई इसे समझेगा नहीं। बह गई करवत एन, वो परमात्मा का जो संस्पर्श क्या हुआ, जैसे आरी से कोई हृदय को काट गया, ऐसी मेरी हालत हो गई, मैं टुकड़े टुकड़े हो गई। कल न पड़त तलहरी मग जोवत, बस रास्ता देखती हूं, जरा भी कल नहीं पड़ता, बस रास्ता ही जोहती रहती हूं। आंखें द्वार पर ही टिकी भई छमासी रैन। और दुख के ये क्षण, विरह के ये क्षण बड़े लंबे हो गए, एक एक रात छह छह महीने लंबी मालूम पड़ती। दुनिया की हकीकत से हरगिज इंकार नहीं मुझको, लेकिन हरदम के बिगड़ने बनने से तस्कीन नहीं, आराम नहीं। अब दीदाओ दिल मुतलासी हैं इस हाजिर नाजिर हस्ती के, जिसका न कोई आगाज कहीं और कोई कहीं अंजाम नहीं। जो दूर हो तो एक एक घड़ी सदियों के बराबर होती है, जो पास हो तो कुछ अपने लिए ये सुबह नहीं ये शाम नहीं। प्रेमी पास हो, साधारण जगत में भी प्रेमी पास हो तो समय मिट जाता है, ज्यादा देर नहीं मिटता ये समय, क्योंकि साधारण प्रेमी कैसे समय मिटा देगा। लेकिन परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाए तो समय के बाहर उतरना शुरू हो जाता। जितनी देर को परमात्मा में होता है भक्त, उतनी देर समय में नहीं होता, संसार में नहीं होता। और फिर जितनी देर परमात्मा में नहीं होता उस दिन उतनी देर ऐसे तड़फता है जैसे मछली सागर के बाहर किनारे पर पटक दी गई हो, जलती धूप में आग जैसी रेत पर तड़फती हो। और पीड़ा के क्षण लंबे हो जाते। कल न पड़त तलहरी मग जोवत भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे दुख मैठन सुख देन। मीरा कहती बस एक ही पुकार, एक ही पुकार, श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में, एक ही आकांक्षा की कब मिलोगे, अब कब मिलना होगा, अब फिर मिलना कब होगा। भक्त की यही प्रार्थना है और यह प्रार्थना एक दिन पूरी होती। पुकारते जाता है भक्त, एक ऐसी घड़ी आती कि पुकार ही रह जाती, भक्त नहीं रह जाता, प्यास ही रह जाती, प्यासा नहीं बचता। और जिस दिन प्यास ही बची, प्यासा नहीं बचा, उसी क्षण पूर्णता हो जाती, उसी क्षण क्रांति घट जाती, उसी क्षण पर्दा गिर जाता संसार पर और पर्दा उठ जाता परमात्मा पर। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहती मुझे तो कुछ होश हवास नहीं है, मैं तो रोने में पड़ी हूं, अगर वे आ जाएं, उन तक पर्दा उठ जाए तो कोई मुझे खबर कर देना। दुनिया ही बदल जाती है मेरी जब उनकी अनायत होती है। मिट जाते हैं दिल के गम सारे, राहत ही राहत होती है। आते हैं नजर सब अपने ही, यहाँ कोई गैर नहीं होता। सब दिल की कदूरत मिटती है, उल्फत ही उल्फत होती है। कुछ ऐसा अपनी आंखों में बस जाता है नूरे हुस्न अजल। हर वक्त निगाहों में रक्षा एक मोहनी सूरत होती है। दुख है तो यही मस्ती अपनी कायम नहीं होने पाई है। एहसास से हुई जब से होता है बेहद ही कुल्फत होती है। जिस दिन से परमात्मा की पहली झलक मिलती उस दिन से असली तकलीफ शुरू होती है, असली कांटा चुभता है। दुख है तो यही मस्ती अपनी कायम नहीं होने पाई, मस्ती आती जाती कायम नहीं हो पाई। एहसास दुई जब होता है बेहद ही कुल्फत होती। और जब भी ये ख्याल आता है कि हम अभी भी परमात्मा से दूर हैं, जबकि उसमें हो सकते, क्योंकि एक दफा होके जान लिया तो बड़ा दुख होता है, बड़ी बेचैनी होती। कुछ ऐसा अपनी आंखों में बस जाता है नूरे हुस्ने अजल। एक बार देख लिया उस अपार सौंदर्य को तो वो ऐसी आंखों में बस जाता है। हर वक्त निगाहों में रक्षा एक मोहनी सूरत होती, फिर एक मोहनी सूरत आंखों में नाचती ही रहती। और कृष्ण से प्यारी सूरत कहां खोजोगे? मीरा ने ठीक प्यारा खोजा, प्यारे की ठीक प्रतिमा खोजी। और मीरा मगन होते होते एक दिन उसी मूर्ति में खो गई। भक्ति में तुम्हें रस आता हो तो जैसे मीरा ने दामन पकड़ लिया कृष्ण का, तुम मीरा का दामन पकड़ लो। जो मीरा को हुआ वह तुम्हें भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति तुम्हारे लिए सहज हो तो ही, असहज को मत चुन लेना। दो ही मार्ग हैं, ध्यान और प्रेम। प्रेम सहज हो तो मीरा का रास्ता चुन लेना, और ध्यान सहज हो तो बुद्ध का रास्ता चुन लेना। बस दुनिया में दो ही धर्म है, क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है निर्णय कि तुम्हारे लिए किस में रस है। और किसी कारण को ध्यान मत देना, सिर्फ अपने रस को ध्यान देना। मेरे पास कुछ दिन पहले किसी सज्जन ने आके कहा कि मुझे रस तो नाचने भजन में आता, लेकिन वो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं, तो सीखना मैं ध्यान चाहता हूं। अब ये अड़चन में पड़ जाएगा आदमी। ये ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे ये भटकेगा, परेशान होगा, पहुंचेगा नहीं। और कोई कारण से मत सोचना, बस एक ही बात पर्याप्त है सोचने के लिए, जो तुम्हारे हृदय में रम जाए, जो तुम्हें जचे, जिससे तुम्हारे हृदय के फूल खिले, जिसकी बात सुनते ही तुम्हारे भीतर एक कपकपी दौड़ जाती हो, रोमांच हो जाता हो, बस वही तुम्हारे लिए। फिर सब चिंता छोड़कर उस पर चल पड़ना। यहां खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को परमात्मा, इसलिए क्या खो जाएगा इसकी बहुत फिक्र मत करो। ध्यान रखो उस पर जो मिलने को है, वो अमोलक निधि, वो राम रतन धन। आज इतना ही।
Like sunshine over my face, assure your blessings, fill me with praise. I feel your love from my head to my toes. Whenever I see you, it grows and it grows. You put a song in my life. 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 Spreading like sunshine over my face. Oh, show your blessings. Fill me with grace. I feel your love. To my toes.
आज के एपिसोड में म्यूजिक शुभा मुद्गल, प्रेम जोशवा और सॉन्ग्स ऑफ अवेकनिंग म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
तुम सभी ऐसे पत्थर हो जिनके पीछे भगवान छिपा है। जब मैं तुम्हें संन्यास देता हूं तो उसी आशा से संन्यास देता हूं जिस आशा से माइकलएंजेलो उस पत्थर को उठा के ले गया था। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो मुझे पुकारता उसी की आशा से कि शायद कुछ संभावना है। चोट करनी होगी निश्चित। खार फैला के बागे हस्ती में गुंचाओ गुल खिलाए जाते हैं। बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, वो उधर मुस्कुराए जाते हैं। और पीड़ा बहुत होती भक्त को कि हम यहां मुश्किल में पड़े हैं और तुम वहां खड़े मुस्कुरा रहे हो, आकाशों में बादलों पर सवार चांद तारों में बैठे। तुम वहां मुस्कुरा रहे हैं, यहां हम पीड़ा से जले जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा मुस्कुराता है जब कोई प्रेम से जलता है, क्योंकि परमात्मा को भविष्य पता है, तुम्हें भविष्य पता नहीं। जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता हो कि वृक्ष पैदा होगा और हजारों फूल लगेंगे और पक्षी मुझ पर बसेरा करेंगे और घोंसले बनाएंगे और यात्री मेरी छाया में विश्राम करेंगे। बीज जब टूटता है तो बीज को कैसे पता हो? ये तो माली जो बैठा है किनारे मुस्कुरा रहा है उसको पता है कि टूटो, जल्दी टूटो। ये तो गुरु को पता होता है कि शिष्य जब टूट रहा है, नष्ट हो रहा है तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य तो तड़फता है, परेशान होता है, वो तो सोचता है ये किस झंझट में पड़ गए, पहले ही भले चंगे थे, सब ठीक तो था, जैसा था ठीक था, न कोई बड़ी आकांक्षा थी न कोई बड़ी पीड़ा थी। बड़ी आकांक्षा के साथ बड़ी पीड़ा आती और परमात्मा सबसे बड़ी आकांक्षा है, इसलिए परमात्मा के साथ सबसे बड़ी पीड़ा आती। जो उस पीड़ा को झेलने को तैयार है वे ही केवल चल पाते हैं।
Oh, I go to the feet